तो हर एक सखी की अपनी अपनी सेवा होती है, फिर भी कुशलता जो है वो एक सखी के बाद में एक सेवा की होती है। तो विशाखा देवी की सेवा जो है वो भगवान को वस्त्र पहनाने की है। जब कभी भगवान और राधा रानी को श्रृंगार करने का समय आता है तो वस्त्रों से श्रृंगार करने में वो बहुत कुशल है, बहुत तेजी से बनाती है, बहुत कुशलता से, बहुत ही महीन यानी कि वेरी फाइन अरेंजमेंट्स ऑफ ड्रेसिंग वो अरेंज करती है। और एक चीज होती है, उसका नाम है पत्रावली। पत्रावली मतलब आप देखते हैं ना, कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे तो उनके चेहरे पर आप कुछ फूल निकालते ना, हरे रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, उसको पत्रावली कहते हैं। उस कला को पत्रावली कला कहते हैं, जो भगवान के चेहरे को, भगवान के शरीर को, भगवान के चरण कमलों में अलग अलग डिजाइन बनाते हैं ना, नक्शी काम करते हैं, उसको पत्रावली कहते हैं। उस पत्रावली में विशाखा देवी बहुत कुशल है। और भगवान की अलग अलग प्रकार से सेवा होती है, इत्र की सेवा भी होती है, और इत्र जो है सखियां अपने हाथ से बनाती है। कुछ इत्र जो है वो कर्पूर से बनते हैं, कुछ इत्र जो है फूलों के रस से बनते हैं, एसेंस होता है उसका, कुछ लकड़ी के चंदन जैसे लकड़ी से बनते हैं। तो ये सभी प्रकार के इत्र जो हैं वो विशाखा देवी बनाने में बहुत कुशल हैं। और वो किस तरह से, किस समय पे, कैसे, कौन से वातावरण में, कौन से भाव में, कौन से इत्र का इस्तेमाल करना है, ये विशाखा देवी जानती हैं मौसम के अनुसार। अब ऐसा नहीं कि हम ठंड के मौसम में गुलाब का इत्र नहीं लगाते, चंदन का इत्र नहीं लगाते, नहीं, क्योंकि वो ठंडा होता है वो, तो ठंड के मौसम में हिना लगाते हैं या कस्तूरी लगाते हैं जो गर्म होता है, और ठंड के मौसम और गर्मी के मौसम में फिर गुलाब, चंदन के इत्र लगाते हैं जो ठंडक पैदा करते हैं। ये सब बड़ा शास्त्र है, एरोमाथेरेपी, इट्स नॉट ऑर्डिनरी। एरोमाथेरेपी स्टिल इज अ ब्रिटिश वर्जन ऑफ ओरिजिनल इत्र साइंस। हरे कृष्णा। तो ये इत्र के विषय में भी बहुत कुशल है वो, और ठाकुर जी के मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार, भाव के अनुसार, लीला के अनुसार वो इत्र को भगवान को प्रस्तुत करती है। आपने देखा है मायापुर में गए होंगे आप, ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन खुलता है तो पुजारी शंख बजाते हैं, फिर दर्शन खुलता है, फिर क्या होता है, एक अचानक भक्त ऐसे आते हैं, दो तरफ से आते हैं ऐसे, एक ऐसे आता है, एक ऐसे आता है, और ठाकुर जी के ऊपर वहां से आता है, वो यहां से चला जाता है, यहां से आता है, वहां से चला जाता है। बहुत सुंदर था, सो वेल कोऑर्डिनेटेड, यू नो, यू फील सो नाइस। और बहुत नेचुरल तरीके के जो इत्र हैं वो भगवान के श्रृंगार के ऊपर वो करते हैं, उसको वो चले जाते हैं। ये बहुत बढ़िया सेवा है। हाँ, ऐसे कहते हैं कि हमारी जो नाक है ना, ये स्मृति के लिए बहुत पावरफुल वस्तु है। कोई खुशबू या कोई बदबू आपको कोई कई जगह पर आपको मिली हो तो वो दोबारा आने पर आपको उस स्थिति की तुरंत याद आती है। बचपन में अगर आप गौशाला में खेले हो और फिर अगर 50 साल की उम्र में गौशाला में गए तो आपको बचपन की याद आएगी। ये गंध में इतनी शक्ति है स्मरण की। जो जो स्मृतियां आपकी बहुत कठोर, मतलब कठोर नहीं, मतलब क्या, गहरी स्मृतियां हैं, वो अगर किसी गंध के साथ में संबंध है उनका, तो वो गंध आते हैं आपको तुरंत उस स्थिति की याद आएगी, चाहे वो 50 साल पुरानी क्यों ना हो। सो स्मेल इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद मेमोरी ऑल ऑफ अस। इस तरह से आप अगर धाम में कोई आपको गंदा लगी हो, ऐसी दिल में छू गई हो, तो उसको याद करना, तो वो गंदा आते आते आपको धाम की याद आएगी, है ना। हरे कृष्णा। और इनकी एक विशेषता ये है कि वो जो वस्त्र होते हैं उस पर वो काम करते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी, उसको कहते हैं बेल बूटे का काम बोलते हैं यहाँ की भाषा में। हाँ, क्या कहते हैं, हाँ, वो जो बनाते हैं ना उसमें बहुत कांच लगाते हैं, बांधनी कहते हैं उसको, कभी कभी अलग अलग रंगों के धागे से बनाते हैं उसको, एम्ब्रॉयडरी, हाँ, क्या कहते हैं उसको, नक्शी काम का वस्त्रों पर, उसमें भी वो कुशल है बहुत। साथ साथ में राधा और कृष्ण को हास परिहास करने में बहुत कुशल है वो। हाँ, शी क्रिएट्स अ वेरी लाइट एंड जोकिंग एंड हैप्पी एटमोसफियर। जरूरी है ना, थोड़े हर समय ऐसे लटकाए रहना अपने को। तो वही समझो, बहुत थोड़े विरह में है, थोड़े से दुखी है, थोड़े झगड़ा करके आए हुए हैं राधा कृष्ण भगवान, मान कर रहे हैं, थोड़े से वाद विवाद हो रहा है, तो ये जाके बीच में ऐसा वातावरण पैदा करते हैं एकदम हास परिहास का। ये विशेषता है ब्रज की। अलग प्रकार के रस होते हैं, 13 रस बताए गए हैं, उसमें हास्य रस भी एक है। तो ये हास परिहास का जो है लाइट मूड शी क्रिएट्स वेरी एक्सपर्टली। इनके पिताजी जो है, क्या नाम बताया उनका मैंने, नहीं, सूर्य को सत्य मत बनाइए आप, सत्य को सूर्य मत बनाइए। सत्यभानु ये बड़े विद्वान है, बड़े पंडित है शास्त्र में, इसलिए ये भी बहुत पंडिता है स्वयं। हा? जैसे चित्रा सखी के पिताजी कौन है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए वो भी बहुत एक्सपर्ट है ज्योतिष शास्त्र में। इनकी और एक विशेषता यह है कि इसे हम सबको इनका अनुकरण करना चाहिए, ये हमेशा बहुत गहरे विचार में रहती है कि कैसे अलग अलग प्रकार से राधा और कृष्ण का मिलन किया जाए, अलग अलग जगह पे, अलग अलग भाव में, अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग लीलाओं के माध्यम से, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग वातावरण में, कैसे विविध प्रकार से एक ही वातावरण में अलग अलग प्रकार से उनको मिलन किया जाए, ऐसे वो बहुत प्लानिंग करती है, बहुत उसमें एक्सपर्ट है वो, शी इज वेरी क्रिएटिव। हाँ, तो भगवान को, राधा रानी को और कृष्ण भगवान को मिलन करने के लिए अलग अलग प्रकार के कभी सोचे नहीं ऐसे तरीकों को निकालती है। और वृंदा देवी जो है इनकी असिस्टेंट है, वृंदा देवी की एक विशेषता है, वृंदा देवी जो है वो बहुत बढ़िया सखी है वृंदावन, वृंदा देवी भगवान की। वृंदावन जो है वो भगवान ने बनाया, राधा रानी को भेंट दिया, और राधा रानी ने वृंदा देवी के सेवा भाव को देखते हुए वृंदा देवी को ये वन भेंट दिया जो भगवान को अति प्रिय है, उसका नाम ही लिखा वृंदा देवी, इतनी भगवान को भी प्रिय है वो, और इतना वन भी भगवान को प्रिय है, इसलिए उनका नाम उस वन को दे दिया। और वही तुलसी देवी है जो पृथ्वी पर तुलसी के रूप में आती है। इनकी क्या सेवा है ओरिजिनल गोपी के रूप में, कि ब्रज में जितने भी स्थान हैं उनके पास 1000 तोता हैं, हाँ, कीर कीर बोलते हैं उसको, पैरट्स, और वो उनके असिस्टेंट्स हैं। अगर आपको नींद आती हो तो खड़े हो जाना, मुझे पता है कि थकान आपके अंदर अभी भी जमी हुई है गोवर्धन यात्रा की, लेकिन ये ऐसा मधुर वर्णन करने का मौका बाद में नहीं आएगा, किधर ब्रज में ही आ सकता है। तो उनके 1000 तोता जो है वो सब जगह ब्रज में उनको भेज देती है, चारों दिशा में, चारों आठों दसों दिशा में भेज देती है। और उनका काम क्या है कि क्या क्या वातावरण ब्रज में बना हुआ है, किस तरह से, किस जगह पर कौन से रंग के फूल खिले हैं, किस तरह जगह पर कौन सा रंग प्रधान है, किस जगह पर किस तरह हवा बह रही है, किस तरह में, किस जगह पर क्या भाव है, कौन से फूल खिले हुए हैं, कौन से प्रकार के फल खिले हुए हैं, हर प्रकार, कौन सी गंध बह रही है, ये सारा जो डिटेल्ड स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन जो है, जर्नलिज्म, वो पूरा सब इन्फॉर्मेशन जो है वो वृंदा देवी को आके देते हैं। और वृंदा देवी क्या करती है, विशाखा देवी के निर्देश और डिस्कशन के अनुसार, चर्चा करने के पश्चात तय करती है कि आज इस सारे इन्फॉर्मेशन के अनुसार, 1000 तोतों के द्वारा प्राप्त हुई इन्फॉर्मेशन के बाद में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार वृंदा देवी विशाखा देवी की चर्चा करने के पश्चात तय करते हैं कि आज शाम को राधा कृष्ण को कहाँ मिलन किया जाए, फिर उस जगह पर कौन से वस्त्र पहने जाए वो भी तय करते हैं, कौन से फूल पहने जाए वो तय करते हैं, किस जगह पर लीला करनी है, क्या प्रसाद बनाना है, कौन सा राग गाना है, कौन नृत्य करेंगे, कौन वाद्य बजाएंगे, कौन बीड़ा बनाएंगे, कौन क्या कहते हैं उसको, शेष सोने के लिए शैया बनाएंगे, पुष्प वितान, एक पुष्प का एक कला होती है, सब चीज पुष्प से बनाते हैं गोपियां, उसमें ललिता देवी बहुत बहुत एक्सपर्ट है। आप पुष्प वितान मतलब पुष्प की कमान बोलिए, पुष्प का शैया बोलिए, या पुष्प का कमरा, पुष्प का दरवाजा, ये पुष्प की मालाएं, सब पुष्प का जितना श्रृंगार होता है वो सारा पुष्प का श्रृंगार बनाने में ललिता देवी बहुत कुशल है। तो विशाखा देवी तय करेंगी और फिर ललिता देवी उसके अनुसार व्यवस्था करेंगी, उसमें कौन सा रंग होगा, कौन सी खुशबू होगी, सब कुछ वो तय करती। तो ये जो सेवा है ये वृंदा देवी की सेवा है। वृंदा देवी के पास में ब्रज में जगह जगह स्टोर्स हैं उनके वस्त्रों के और आभूषणों के, क्या क्या पहनना है, कौन से अलंकार पहनना है, सब कुछ उनके जगह जगह पे है। तो वहां जाते हैं सब लोग, पूरी झुंड वहां पहुंचता है, और एक जगह पर राधा रानी का ड्रेसिंग रूम होता है, उस जगह पर एक जगह कृष्ण का होता है, और कृष्ण को यहाँ पर कुछ सखियां डिवाइड हो जाती हैं उनको दुल्हा बनाने के लिए, और राधा रानी को इस तरह श्रृंगार करते हैं, और फिर समय तय होता है और उनका स्वागत होता है निकुंज में। निकुंज बोला बताया ना आपको मैंने, जो बंद होता है उसके सामने एक गेट होता है, उसके अंदर एक सखी खड़ी होती है पहरेदार के रूप में, और फिर सबका स्वागत करती है, फिर उनको तांबूल, उनको इत्र सब करते करते अंदर बिठाते हैं रत्न सिंहासन पे, और फिर वो जिला जो है पूरा उसका जो आयोजन है, इवेंट मैनेजमेंट, और वृंदा देवी के पास है। तो वो वृंदा देवी जो है ये विशाखा देवी के सजेशन के अनुसार ये सब व्यवस्था करती है। ये गोपियों के अंदर एक बहुत विशेष बात है, वो सब कुछ सेवाएं जो करती हैं बड़ी सहयोग के साथ में करती हैं, फुल कोऑपरेशन इज देयर। कोई मतभेद मत मतलब विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतिमतः वो करेंगे जो सबको मंजूर है, और उससे भी ऊपर मंजूर के ऊपर भी राधा कृष्ण को जो आनंद देगा उस पर उनकी प्रधानता होती है तय करने की। द प्रायोरिटी इज नॉट वॉट आई फील वॉट यू फील, द प्रायोरिटी इज वॉट विल बी प्लीजिंग टू देम, उसके ऊपर वो निर्णय लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए जो पारिवारिक जीवन जो गोलोक वृंदावन का है वो पूर्णता सहयोग पर आधारित है, और केंद्रीय केंद्र स्थान में श्री कृष्ण भगवान है। तो ये अलग अलग प्रकार के तरीकों से राधा कृष्ण को कैसे मिलन किया जाए इसके बारे में सतत चिंतन करती रहती है। हमें भी ऐसा करना चाहिए, हाउ टू सर्व कृष्णा कॉन्स्टेंटली, हाउ टू प्लीज हिम, ये हमेशा हमको मन में विचार करते रहना चाहिए। कैसे भगवान को मैं रिझाऊं, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करूं, कौन सी सेवा करूं जिससे उनको आनंद आएगा, इस भाव में हमको रहना चाहिए। और साथ साथ में भगवान को मिलाने के पश्चात, मिलन होने के पश्चात कैसे उनको अलग अलग रसों का आस्वादन किया जाए, हाउ टू मेक देम हैप्पी बाय डिफरेंट 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 वेज इन वन लोकेशन एंड वन सिचुएशन, उसका भी वो बहुत विचार करती है और अपनी कुशलता से ये सब व्यवस्था बनाती है। तो इस तरह से विशाखा देवी का विशेषता यहाँ पर समाप्त होती है। और विशाखा देवी का गांव है, क्या बताया मैंने, अंजनोक, अंजनपुर बंद। इसका नाम अंजनपुर क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर बहुत सुंदर लीला है, अनंत लीला है वहां पर, जो पता है वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि भगवान की लीला का वो ऐसे प्रशांत महासागर की तरह है, उसकी गहराई कितनी है और उसका विस्तार कितना है कोई ढूंढ नहीं सकता है उसको, वैसे भगवान की लीला अनंत लीला है। तो उसमें से एक लीला हमको पता है जो शास्त्रों से माध्यम से उपलब्ध है, वो ये है कि जैसे एक दिन अंजनपुर में राधा कृष्ण को मिलन किया जाए ऐसे तय होता है, और श्री जी को एक जगह पर श्रृंगार हो रहा है और कृष्ण भगवान का हो रहा है, और समय तय किया गया है कि कहाँ मिलना है, तो अंजनपुर में मिलना है, किस जगह मिलना है, किस समय पर मिलना है। तो कृष्ण भगवान का श्रृंगार जल्दी करके वो सब लोग कृष्ण भगवान को समय पर वहां पर उपस्थित करा देते हैं। और राधा रानी का श्रृंगार अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ये सब कुछ होता है गोलोक वृंदावन में, वृंदावन धाम में। लेट भी होता है, जल्दी भी होता है, टेंशन भी होता है, उत्सुकता भी होती है लेट होने के बाद, सब भगवान के भाव को बढ़ाने के लिए सब व्यवस्था होती है। तो राधा रानी का श्रृंगार चल रहा है अभी तक, ललिता देवी और शाखा देवी मिलकर श्रृंगार कर रही है उनका, और लेट हो रहा है, और कृष्ण भगवान बहुत अधीर हो रहे हैं उनको मिलने के लिए। तो उनको सिग्नल देने का क्या तरीका है उनके पास बताइए, हाउ डज ही गिव सिग्नल और इशारा, फ्लूट। क्योंकि जो ऐसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में कि जो फ्लूट जो है, ये बंसी जो है, ये इट्स अ कॉन्स्टेंट अकम्पनीमेंट, ये सहचरी भगवान की हमेशा भगवान के साथ रहती है, उसके माध्यम से भगवान अनंत कार्य करते हैं, केवल एक ही कार्य नहीं करते हैं, किसी को बुलाना है तो बुलाते हैं, हाँ आपको बुलाएंगे तो एक धुन बजाएंगे तो उसमें से आपको आपका नाम सुनाई पड़ेगा, इनको इनका नाम सुनाई पड़ेगा, इनको इनका नाम सुनाई पड़ेगा, एक ही धुन बजाएंगे लेकिन आपके हृदय में आपका नाम गूंजेगा, ऐसी भगवान की बंसुरी है। तो भगवान की बंसुरी तो उसकी अगाध लीला है। एनीवे वी नॉट गेट डाइवर्टेड इनटू बंसी लीला, बट वो बंसी बजाते हैं और इशारा करते हैं कि मैं वेट कर रहा हूं। वो ऐसी बंसुरी बजाते हैं कि मानो वो आपसे बोल रहे हैं, धुन बज रही है एक राग में, लेकिन जो जिसको क्या बताना है वो उसको सुनाई पड़ता है उस बंसुरी के माध्यम से। तो बंसुरी बजाते हैं, बताते हैं, अरे कहाँ हो, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ आपका, जल्दी आ जाओ। और राधा रानी भी वो आतुर हैं, उनको भी बताया ना कि यहाँ पर समय आगे जा रहे हैं, टाइम इज गेटिंग ओवर, मैं लेट हो रही हूँ, उनको उनको भी उत्सुकता बढ़ रही है, और फिर ऊपर से बंसी बजती है, फिर और उनकी उत्सुकता बढ़ती है, एकदम जल्दी जल्दी सब लोग सखी एकदम जल्दी जल्दी जाने का भाव उत्पन्न करते हैं, और उतने में राधा रानी बहुत अधीर हो जाती है और ऐसे उठ जाती है और तुरंत चल पड़ती है भाग के, एकदम भाग के आ जाती है अंजनपुर में। जैसे आती है भाग के तो कृष्ण उनको देख के हंस पड़ते हैं, क्यों हंस पड़ते हैं, अरे आपने काजल लगाया नहीं आज, काजल लगाना रह गया, मतलब क्या करें आपने बंसुरी बजाई, हम लोग अधीर हो गए और रह गया, फिर वो हम लोग भाग भाग के आ गए, चलो फिर दोबारा जाके करके आते हैं, नहीं 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 अभी तो मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा, अभी आप मेरे संग रहिए, आपका बचा हुआ श्रृंगार मैं पूरा कर दूंगा। बिल्कुल करेंगे, उसको कथा के पश्चात दे देंगे सबको, हाँ अभी मत देना, कथा में व्यवधान आएगा ना, आप रखिए सबको ले, सबको दे देंगे हम, ठीक है, इनको दे दीजिए या हम बंटवा देंगे उसको, जैसे आपकी इच्छा हो, हाँ इनको दे दीजिए, हम कथा के पश्चात सबको बांट देंगे, है ना, वो सही समय है उसका देने का भी। थैंक यू वेरी मच, हाँ हरे कृष्णा।
चना और लगे
थोड़ा मुझे इस तरफ आना आप जरा,
एक सेकंड में मैं जा ही रहा हूँ।
नहीं नहीं ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
धन्यवाद वाली कोई बात नहीं, श्री राधे,
हाँ बिल्कुल,
इसमें ऐसा धन्यवाद वाला हमने कोई काम नहीं किया हमारा,
जय श्री राधे, थैंक यू। तो ठाकुर जी के तक कोई जाने की जरूरत नहीं, हम आपका श्रृंगार पूरा कर देते हैं। तो वहां पर एक शिला थी, पत्थर ऐसा, उसमें भगवान ऐसे हाथ उंगली घिसते हैं, उसमें से काजल उत्पन्न होता है और अपने हाथ से भगवान उसकी काजल की सेवा करते हैं, उनकी आंखों का श्रृंगार करते हैं। तो राधा रानी भी अपने हाथ से काजल निकाल के कृष्ण को काजल लगाते हैं, सब लोग फिर अपने हाथ से घिस के एक दूसरे को काजल लगाते हैं। वो शिला जो है वहां पर अभी भी है, उसका नाम है कजरीली शिला, ऐसे कहते हैं काजल शिला। और फिर श्रृंगार पूर्ण करके फिर राधा कृष्ण वहां पर लीला करते हैं। तो ये जो है इसमें दो तीन चीजें बताने जायक है कि जो उत्सुकता का भाव होता है ना, जो देर होने पर होता है, उसको कहते हैं विशुद्ध खंडिता भाव। सभी टेक्निकल वर्ड आपको समझना जरूरी इतना है कि जो जैसे हमारा भी कभी लेट होता है तो हम भागते ना एकदम से जल्दी जल्दी में, खास करके अगर हमने हमारे होने वाले पत्नी को समय दिया है या होने वाले पति को समय दिया है और लेट हो रहा है, बस नहीं आ रही है, टैक्सी नहीं मिल रही है और हम लोग कहीं अटके हुए हैं, तो कैसा होता है ना। थोड़ा बहुत आपको मैं अपने जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ लेकिन ये बहुत मतलब ऐसा उदाहरण है, तो घटिया उदाहरण है भगवान का जब देर होती है और वो उत्सुकता बढ़ती है तो वो दिव्य है सब कुछ चीजें, उनका अनुभव और उनका वर्णन हम किसी तुलना से नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो उसको उस भाव को जो देर होने वाली की जो स्थिति है, उस भाव को विशुद्ध खंडिता भाव कहते हैं। और वो विशुद्ध खंडिता भाव बार बार उत्पन्न होता है ब्रज में राधा और कृष्ण के बीच में, और इस भाव को हैंडल करने में ललिता देवी बहुत कुशल है। मतलब उसमें राधा रानी एकदम परेशान हो रही, जाना है और श्रृंगार बाकी है, तो उस स्थिति को अच्छी तरह मैनेज करने में ललिता देवी बहुत कुशल है। ये भी एक एक्सपर्टीज है कि उस समय कैसे माता और उनको कंट्रोल में रखते हुए अपने एक इष्ट को पूर्ण करना है और फिर आगे का कार्य करना है, इसमें ललिता देवी बहुत कुशल है। तो ललिता देवी सब कुछ मैनेज करती है, उनको अच्छी तरह पहुंचाती है, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में कई त्रुटियां हैं, कई त्रुटियां हमारे अंदर, ऐसा उसको उल्टा तरह से कहा जाए तो हमारे जीवन में हम हो सकता है मैक्सिमली किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं, अगर उसको दूसरी तरफ से कहा जाए तो। कोई भी व्यक्ति हर कला में हर बात में निपुण नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति अगर स्त्री है तो हो सकता है कि वो खाना बनाने में कुशल हो लेकिन और सफाई रखने में वो कुशल नहीं हो, हो सकता है। कोई व्यक्ति गायन में एक्सपर्ट हो सकता है, बाकी सारी बातें जीवन में उसकी फेल हो सकती है, उसका विवाह नहीं होगा, उसका डिवोर्स हो जाएगा या उसको उसकी मैत्री नहीं होगी किसके, लेकिन गाने में बहुत एक्सपर्ट है। कोई व्यक्ति मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट है लेकिन जैसे ही वाद्य बजता है तो उनका सुर कहीं और चला जाता है, हो सकता है, सर पॉसिबल। तो भौतिक दुनिया में ऐसा भगवान ने व्यवस्था किया है कि कोई परिपूर्ण नहीं है, सब लोग अपूर्ण है इसमें, केवल लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, ये परिपूर्णता की ओर हम उसका उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं, सब लोग हम सब त्रुटियों से बने हुए हैं। ज्यादा त्रुटियां हैं, कुशलता केवल एक ही है, वो भी कुशलता के अंदर हम क्या परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। समझो हम गायन में एक्सपर्ट हैं तो हमारे ऊपर भी कोई होगा, उसके ऊपर भी कोई होगा, उसके नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा। यू कैनॉट से आई एम द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन एवरीथिंग इन दैट वन थिंग ऑल्सो। डॉक्टर हम लोग हैं तो आगे जाएंगे तो और डॉक्टर्स भी एक्सपर्ट हैं, और भी एक्सपर्ट हैं, उसके आगे जाएंगे और एक्सपर्ट हैं, और एक्सपर्ट हैं। आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आई एम इन दिस वन थिंग आई एम द बेस्ट, नहीं कर सकते ऐसे। ये भौतिक जीवन ही ऐसे भगवान ने डिजाइन किया है लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब जाएंगे हम तो हर एक कला में हम लोग निपुण हो जाएंगे, जैसा जीवन ऐसा है गोलोक वृंदावन का। तो राधा रानी आई ना त्रुटि लेकर, कमी लेकर आई ना, उन्हें श्रृंगार पूरा नहीं था उनका, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको पूरा कर दिया। क्या रहस्य है इसके पीछे, क्योंकि वो सब श्रृंगार करती ही क्यों है, खुद को सुंदर बनाने के लिए नहीं, अपना स्थान बढ़ाने के लिए नहीं, कि मैं सुंदर बनूंगी तो कृष्ण मुझे निहारेंगे तो उनको आनंद होगा, इसलिए वो श्रृंगार करती है। श्रृंगार तो एक ही बात है, वही श्रृंगार अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी और के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन राधा रानी जो भी कार्य करती हैं, हर कार्य केवल प्रियतम के कृष्ण के संतुष्टि के लिए करती हैं, उनके आनंद के लिए करती हैं, क्योंकि उनका भाव परफेक्ट है और बाहर दृष्टि से उसमें कमी आ गई कि वो कार्य काजलने लगा है, तुरंत भगवान ने उसको पूरा कर दिया। तो हमारे जीवन में भी कई त्रुटियां हैं, कई दोष हैं, हमारी सेवा में भी दोष हो सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं फिर भी हमारे सेवा में त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन अगर हमारा भाव सही है भगवान को संतुष्ट करने का, तो हमारी सेवा की त्रुटि भगवान झट से पूरी कर देते हैं। इसलिए हम लोग बार बार क्या कहते हैं, जो हम लोग एक्सटर्नल जो वातावरण है सेवा का करते ना, योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, वो कितना भी आप प्रयत्न करेंगे तो उसमें त्रुटि रह ही जाएगी। जैसे हमने कल आपको वादा किया था बड़े गर्व से कि जब आप पहुंचेंगे तो आपको गर्म पानी मिलेगा, कहीं क्या हुआ, वो कोयला कहते हैं जला ही नहीं, दो घंटे से कोशिश कर रहे जलाने की उसको, मतलब किस प्रकार का कोयला होता है वो, ऐसा कैसा कोयला हो सकता है कि वो जल ही सकता नहीं है, लेकिन कोयला जला ही नहीं। लेकिन हमारी इच्छा थी मन में कि आपको गर्म पानी मिले। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कितना भी प्रयास करेंगे, हम लोग कितना भी वादा करेंगे, कितना भी दिमाग लगाएंगे और योजना बनाएंगे, फिर भी उसके अंदर त्रुटियां भौतिक जगत में रहती ही रहती है, क्योंकि हम लोग सब लोग असहाय यहां पर पराधीन है, हम लोग नियंत्रक नहीं है, वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, इसलिए हम लोग हार जाते हैं। लेकिन इतना सब करने पर भी, हार जाने पर भी अगर हमको सफल बनना है तो उसका राज क्या है, हमारी चेतना जो है वो सही होनी चाहिए। यू शुड हैव परफेक्ट कॉन्शियसनेस एंड एटीट्यूड, फिर भगवान को हम पसंद कर सकते हैं। जब तक हमारी चेतना सही नहीं है तब तक आप कितना भी परफेक्ट अरेंजमेंट करेंगे तो वो भी अपरिपूर्ण है, भगवान उसे रिझते नहीं। लेकिन अगर हमारी भावना सही है तो हमारे अंदर 50 त्रुटियां भी होंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु महाराज ने मुझे एक बार 5 साल पहले आए थे कैंप में तो बताया था, मैंने उनको पूछा यज्ञ करने के बाद में कि महाराज जी यज्ञ सब ठीक रहा, आपको अच्छा लगा मैंने यज्ञ किया, तो मेरा हाथ पकड़ के वो दूर ले गए एकांत में। उन्होंने कहा कि कलयुग के अंदर आप कितना भी बढ़िया यज्ञ करोगे, कितना भी बढ़िया श्लोक का उच्चारण करोगे, कितना भी बढ़िया कुछ भी करोगे तो भी यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर घी नहीं मिलता है, गाय का भैंस का मिक्स मिलता है, और वो क्या कागज और प्लास्टिक खा के बना हुआ दूध का घी बनता है, और ब्राह्मणों को कोई कुशलता नहीं है कि वो मंत्र बोल के अग्नि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे वो। हाँ, वातावरण में अगर जो कोई शराबी आदमी ने खेती किया और खेती में से कोई धान्य आया जो हमने उसको इस्तेमाल किया यज्ञ में, तो भी वो दूषित हो जाता है। कई प्रकार के ऐसे 50 रीजन है जिससे यज्ञ हमारा खंडित हो सकता है और वो दूषित हो सकता है। तो क्या किया जाए कि जिस यज्ञ में हमारा भाव भगवान को प्रसन्न करने का है वो हमारे पास है तो हमारा यज्ञ सफल है। तो क्या करना चाहिए, शुक्राचार्य ने कहा है कि उस यज्ञ में भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए, बीच में, शुरुआत में, अंत में, बीच में करते रहना चाहिए, सारी कमियां जो यज्ञ की है वो पूरी हो जाती है उसके अंदर। तो क्या मतलब उसका हुआ, भाव, भाव जो हमारा है वो सही जगह होना चाहिए। जब भाव सही होता है तो सारे काम सफल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान बाहरी चीज को स्वीकार नहीं करते, हृदय के भाव के सार को ग्रहण करते हैं, और अगर हमारा भाव सही है तो भगवान प्रसन्न है। इसलिए हमको धाम में आके क्या कोशिश करनी चाहिए, बार बार एक ही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भाव जो है वो अधिक से अधिक से अधिक से अधिक से अधिक अच्छा बने, और जीवन में भी हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जो भाव जो है वो सही होना चाहिए। अगर वो भाव सही है तो लोग बुरा नहीं मानते, दे विल से कि नो ही वॉज नॉट इंटेंडिंग टू डू दिस, आई अंडरस्टैंड, आई नो हिम वेरी वेल, ही इज नॉट लाइक दैट, मे बी समथिंग हैज हैपेंड, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग लाइक दिस। अगर ये विश्वास आप लोगों के मन में पैदा कर सकते हैं तो कई झगड़े खत्म हो जाएंगे, कई झगड़े तल जाएंगे, कई अव्यवस्थाएं लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको, क्योंकि उसका भाव जो है वो सही है। इसलिए अंजनो गांव में हम क्या सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में अनंत त्रुटियां होने पर भी अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो भगवान उसे प्रसन्न हो जाएंगे और जो कमियां है वो भी पूरी कर देंगे। श्री अंजनपुर वन धाम की जय हो। वहां पर एक किशोरी कुंड भी है जहां पर राधा कृष्ण उसके किनारे बैठते हैं और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, किशोरी कुंड। वहां पर एक झूला भी है जहां पर झूले में झूलते भी हैं, और वहां से पास में एक लौधौली गांव है जहां पर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। ब्रज का हर एक कण कण जो है वो लीलाओं से भरा हुआ है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि ब्रज में 6600 करोर्स ऑफ होली प्लेसेस आर देयर, और वे केवल मथुरा मंडल में है, आगे मंडल की बात नहीं किया उन्होंने। कितने 66 अब्ज लीला स्थलियां हैं, कितना हम छू सकते हैं बोलो, कितने को स्पर्श कर सकते हैं, कितने को समझ सकते हैं? कोई मुमकिन नहीं है, क्योंकि भगवान की लीला अगाध है, वो अगाध होती जा रही है। और अभी जब लिखा था तभी 66 अब्ज था, पता नहीं अभी कितने हो गए होंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तभी आप कथा में थोड़ा सा विश्राम लेंगे और यहाँ की कथा आरंभ करने के पहले आप दर्शन करिए और दर्शन करके आइए। यहाँ पर चतुर्भुज विष्णु का दर्शन है, उसका रहस्य क्या है वो हम आपको दर्शन करने के बाद समझाएंगे। आ जाइए। हरे कृष्ण।